तो अगर कोई व्यक्ति है उसको ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो उसको लगता है कि जो पूर्ववर्ती शिक्षाओं में उस पर कभी जोर नहीं दिया गया है, कोई विवाह करना चाहता है उसके लिए मैरिज ब्यूरो में पूछते हैं कि आपका कम्युनिटी क्या है, आपका कास्ट क्या है, तो उसको लगता है कि ये शरीर शारीरिक चेतना पर क्यों बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है ऐसे। तो वास्तव में यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सी यू आर नॉट द बॉडी, दिस इज़ अ वेरी हाई रियलाइजेशन, बहुत ऊंचा साक्षात्कार है। अभी हर स्तर पे, हमारे स्तर पे हम जो शुरुआत करते हैं क्या है, हम इसी स्तर से शुरुआत करते हैं कि आई एम मोर देन माई बॉडी, आई एम नॉट माई बॉडी, ऐसे मैं जी नहीं सकता हूँ। अगर मेरा हाथ टूट गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि हाथ को ठीक करना पड़ेगा। तो आई एम मोर देन माई बॉडी मतलब शरीर की ज़रूरतों को पूरे करने में मेरा सारा ज़िंदगी नहीं डालना है, मुझे शरीर की ज़रूरतों के ऊपर भी कुछ है और वो भी मुझे कार्य करना है। तो द जर्नी टुवर्ड्स रियलाइजिंग आई एम नॉट माई बॉडी बिगिन्स विथ अंडरस्टैंडिंग आई एम मोर देन माई बॉडी। तो मैं मेरे शरीर से और कुछ हूँ, इससे हम शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद में मैं शरीर नहीं हूँ, हम इस तक पहुँचते हैं। भगवगीता में भी हम देखते हैं ये कि दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में अर्जुन को बोलते हैं भगवान देहिनोस्मि यथा देह, कि तुम वास्तव में इस शरीर में आत्मा है, वास्तव में वो तुम हो। और उसके अगले ही श्लोक में, 14वें श्लोक में भगवान दो बार अर्जुन को संबोधित करते हैं उनके शारीरिक संबंधों के द्वारा। मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय, अभी अर्जुन शरीर नहीं है तो कुंती का पुत्र कैसे हो गया वो। मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम आपायनोत्य स्थान शितिक्ष स्व भारत। भारत मतलब भरत वंश में है, तो अभी अगर शरीर नहीं है तो भरत वंश में कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी दाता बोलते हैं कि आप जिस वंश में हो उस वंश की, अगर वो बड़ा वो महान वंश है तो उससे एक जिम्मेदारी आती है, और अर्जुन को जिम्मेदारी से कार्य करना है। और जिम्मेदारी से कार्य करना मतलब आत्मा के ज्ञान के अनुसार आध्यात्मिक जिम्मेदारी के दृष्टि से कार्य करना है। मतलब प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, या कृष्ण क्या कर रहे हैं कि अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान तो दिया, पर आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार जीने के लिए, प्रवृत्त करने के लिए वो जो भौतिक संबंध है उससे भी प्रेरणा ले रहे हैं, उससे उनको प्रेरणा दे रहे हैं। अच्छा, ये आत्मा के साथ जीना आसान नहीं है, पर तुम जो कठिन कार्य कर सकते हो, तुम एक महान वंश हो, तुम एक महान स्त्री के पुत्र हो, इस तरह से। तो शारीरिक संबंध और शारीरिक पहचान जो है उसको हम ठुकराते नहीं है, पर उसको हम इस तरह से करते हैं कि वो हमारे भक्ति के अनुकूल बन जाए। प्रभुपाद जी जब भारत में प्रवचन देते हैं एक बार, तो वो जुहू में प्रवचन, जुहू मंदिर जब बन रहा था प्रवचन दे रहे होते, तभी वो भारतीयों से कहते हैं ये सारा जो ज्ञान है ये भारत का, भगवद्गीता भारत का ही ज्ञान है, और अगर आप ये ज्ञान प्रचार करते हो तो सारे दुनिया में बड़ा मार्केट है। प्रभुपाद जी बोलते हैं बड़ा मार्केट है, और आप चिंता कर रहे हैं कि एक पाकिस्तान चला गया। प्रभुपाद जी बोलते हैं आप भगवद्गीता का प्रचार करो, सारा दुनिया हिंदुस्तान बन जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, मेरे दुर्भाग्य ये है कि दुनिया भर में भारतवासी जाके भगवद्गीता का प्रचार करने की बात तो छोड़ो, मुझे भारत में भगवद्गीता का प्रचार करने के लिए अमेरिका से लोग लाने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, भारत कोई बोले अरे तुम भारतीय हो ही नहीं, भगवद्गीता का संदेश है, भारतीय अमेरिका प्रभुपाद जी बात क्यों कर रहे हैं। क्या है यहाँ पे, प्रभुपाद जी भारतवासियों को भगवद्गीता का ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए प्रेरणा कर रहे हैं। तो ये जो हमारी भौतिक आइडेंटिटी है, भौतिक पहचान है, उसको अगर भक्ति की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो कुछ गलत नहीं है। उस तरह से वहीं पे कुछ दिनों के बाद प्रभुपाद जी जब आई थिंक 1971 में जब उन्होंने बड़ा हरे कृष्णा फेस्टिवल किया था, तो जब उसकी योजना हो रही थी, तो प्रभुपाद जी ने अपने अमेरिकी शिष्यों को बोला कि सारी दुनिया अमेरिका का बड़ा गुणगान करती है कि अमेरिका का बहुत प्रगतिशील है, अमेरिकन लोग बहुत बुद्धिमान है, बड़े आश्चर्यजनक कार्य करते हैं, तो अभी तुमको ऐसा फेस्टिवल बनाना चाहिए कि भारत में कभी ऐसा फेस्टिवल देखा नहीं है, और अगर तुम ऐसे नहीं करो तुम्हारा अमेरिकन होने का क्या फ़ायदा है। यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, वो अमेरिकन जो पहचान है उसको भक्ति सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं। भक्ति भक्ति भक्तों को सेवा में लगाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, उसके द्वारा प्रेरणा दे रहे। तो हमारी भौतिक पहचान को हम पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते हैं, उसको हमें जोड़ना है भक्ति की सेवा, भक्ति में सेवा में। तो अगर हम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को देखते हैं तो उसमें कई जगह पे हम देखते हैं, शुरुआत में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम सब भक्त हैं और हमारी कोई भौतिक चीज़ संबंध नहीं है, भौतिक भौतिक चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। लगभग 1977 तक प्रभुपाद जी के प्रवचन में, खास करके प्रवचन कन्वर्सेशन में अगर देखते हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अभी भक्ति ही करनी, कृष्ण कॉन्शियसनेस करना है और दिव्य स्तर पर जाना है। पर 1970 के बाद प्रभुपाद जी का जो बात है, प्रभुपाद जी बोलते कि अगर आप सब ट्रांसेंडेंटल हो तो सन्यासी को पतन क्यों हो रहा है, अगर आप सब ट्रांसेंडेंटल हो तो जो विवाह है विवाह आपको टूट रहे हैं। बोलते यू ऑल ऑफ यू नीड अ मटीरियल सपोर्ट। और फिर वो वर्णाश्रम के बारे में, 1970 के बाद में प्रभुपाद जी कन्वर्सेशन में वर्णाश्रम काफ़ी जोर दे रहे हैं। अभी वर्णाश्रम मतलब ऐसे नहीं है कि समाज को चार वर्णों में विभाजित करना, वर्णाश्रम का भाव ये है, वर्णाश्रम का एक फॉर्म है और एक इंटेंट है, एक रूप है और एक उद्देश्य है। तो रूप है कि वो चार वर्णों में समाज को विभाजित करना, पर उसका उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति का भौतिक जीवन इस तरह से नियोजित करना कि वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल हो जाए। तो जब बुद्धि बौद्धिक स्तर का व्यक्ति है, बौद्धिक प्रवृत्ति व्यक्ति है, उसको ब्राह्मण का कार्य दो, उसके द्वारा वह उसका जो भौतिक, उसका जो जीवन है, उसकी भौतिक प्रवृत्ति उसके आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल हो सकती है। तो अभी वो व्यावहारिक रूप से कैसे करेंगे, वह अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग हो सकता है। तो पहले जो विवाह होते थे, इस्कॉन में कई बार विवाह होते थे, तो प्रभुपाद जी बोलते थे ठीक है, ये लड़का, ये एक शिष्य बोलते तुम इससे विवाह कर लो, उन्होंने एक दूसरे देखा भी नहीं होता है, वो विवाह कर लेते थे। तभी कुछ विवाह भक्त अपने समर्पण के भाव से वो रह सके, पर अनेक विवाह जो नहीं टिक पाए। क्योंकि पाश्चात्य देशों में ये ऐसे भाव नहीं है कि मैरिज इज फॉर लाइफ टाइम, अगर विवाह कर ले तो जिंदगी भर रहना, अगर नहीं काम नहीं चाहता तो छोड़ दो उसको, ऐसे भाव थे। तो भाव भक्तों में भी था। तो फिर क्या हुआ, प्रभुपाद जी बोले ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे कैसे कर सकते हो आप। तो फिर तभी उसके बाद में तो कंपैटिबिलिटी है, कंपैटिबिलिटी मतलब वो दोनों का जमता है कि नहीं, दोनों की विचारधारा कैसी है, दोनों की संस्कृति कैसी है, वो सब देखना, वो उसको भी महत्व देने लग गए। बेसिकली क्या है कि दोनों कृष्ण भक्त है या आध्यात्मिक है, पर उसके साथ साथ भौतिक भी संबंध में प्रभाव होता है। तो अभी कौन किस चीज़ पे कितना जोर देगा, अभी हम कह सकते हैं कि अभी हमको पूछ कभी कभी पूछते हैं कि क्या आप हिंदू हो, तो अभी हम कहेंगे कि हम हिंदू नहीं हैं, हाँ कृष्ण भक्त है और कृष्ण भक्त दिव्य है, ठीक है ये एक स्तर का जवाब है। पर अगर दुनिया में जो धर्म है उसमें अगर हमको कहीं बताना है तो हम यह तो नहीं कह सकते हैं मुस्लिम हैं। हम एक तरह से कह सकते हैं कि वृंदावन इस भौतिक जगत में नहीं है, पर वृंदावन अगर दुनिया के नक्काशे पे कहीं दिखाना है तो वो चाइना में तो नहीं दिखा सकते, हमको भारत में दिखाना है। भले ही वो दिव्य भी क्यों ना हो, वह इस भौतिक जगत में अगर हम भौतिक क्लासिफिकेशन, भौतिक विभाजन में हमको कुछ दिखाना है तो फिर वो भौतिक दृष्टि से हमें देखना पड़ेगा। तो अगर हम कहते हैं आप हिंदू नहीं हो तो आप कौन से धर्म के हो, अगर हमको हमको पर्याप्त समय है जहाँ पे हम तत्व ज्ञान समझा सकते हैं तो बात सही है, पर अगर इस दुनिया के विभाजन में हमको बताना है तो हमको जो जो भौतिक विभाजन है उसके अनुसार कुछ कुछ बताना पड़ेगा। ये कैसे है कि इसको हम जो पारमार्थिक और व्यावहारिक जो है उसको दोनों को एक नहीं बोल सकते। परमार्थ की दृष्टि से कृष्ण भक्ति दिव्य है, व्यवहार की दृष्टि से कृष्ण भक्ति है हिंदू धर्म का एक अंग है, परमार्थ की दृष्टि से उनके वृंदावन आध्यात्मिक जगत में है, व्यवहार की दृष्टि से वृंदावन भारत में है। परमार्थ की दृष्टि से प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जगत से आए थे, व्यवहार की दृष्टि से प्रभुपाद जी बंगाली थे। जब प्रभुपाद जी बॉम्बे में थे, मैं गिरिराज महाराज से, इसी ये बड़ा विषय है वास्तव में, गिरिराज महाराज से मैं एक बार चर्चा कर रहा था, तो वो बता रहे थे मुझे कि वो उन्होंने देखा कि जो एक आरएसएस के तभी बड़े लीडर, वीएचपी के बड़े लीडर थे, वो प्रभुपाद जी से मिलने आए। उन्होंने जुहू मंदिर के लिए बहुत मदद की थी, तो वो प्रभुपाद जी से बोले कि प्रभुपाद जी आप जो संस्कृत श्लोक बोलते हो वो बंगाली पद्धति में बोलते हो। मैं क्या करूँ, मैं बंगाली हूँ। तो प्रभुपाद जी बोलते मैं शरीर में आत्मा हूँ, पर वहाँ पे अगर उनका बंगाल में जन्म हुआ है तो ऐसे नहीं कि बंगाल में जन्म होके वो साउथ इंडियन पद्धति से श्लोक बोलने वाले। तो अभी कोई कहेगा कि उतना ही व्यक्ति की पहचान है, प्रभुपाद जी बंगाली है मतलब बंगाली है, उनमें कुछ दिव्यत्व है ही नहीं, वो गलत है। पर अगर कोई कहेगा प्रभुपाद जी दिव्य है इसीलिए बंगाली है ही नहीं, वो भी सही नहीं है। तो दोनों भाग है, तो हमें व्यवहारिक दृष्टि से देख के आध्यात्मिक दृष्टि को भूलना नहीं है, पर हमको आध्यात्मिक दृष्टि से देख के व्यवहारिक चीज़ को भी पूरी तरह से नगण्य मानना ज़रूरी नहीं है। दोनों का हमें एक तरह से दोनों को संतुलन, ओके, समन्वय समन्वय संतुलन रखना ज़रूरी है। तो अभी विवाह के समय में अभी जो लड़का है लड़की है सब अलग अलग पार्श्वभूमि से, कौन कितना आध्यात्मिक रूप से सीरियस है ये पता नहीं है, तो इसलिए ये जानकारी के रूप में अगर कोई कहेगा ये हमें क्या है, क्योंकि भारत में जाति के नाम पे कुछ अत्याचार हुआ है और उससे बढ़कर जाति के नाम पे अत्याचार के बारे में बहुत सारा बढ़ा चढ़ा के बाद बताए गए, दोनों हैं ये भौतिक स्तर पे मतभेद और अत्याचार तो होते ही रहता है। अगर हम देखेंगे अमरीकी लोग को, यूरोपियन लोग जो अमेरिका में गए उन्होंने नेटिव अमेरिकन्स पे इतना अत्याचार किया, अत्याचार इतना किया कि वो अभी है ही नहीं अमेरिका में, वो है ही नहीं, जो हज़ार लाखों के रूप में थे अभी कुछ हज़ारों के रूप में रह रहे हैं। वैसा तो नहीं है छोटे, वैसा तो नहीं है जो नीचे नीचे जाते हैं उनके बारे में भारत में, उनका अंत तो नहीं हुआ है, जी रहे, तो वो अलग विषय है। पर क्या है उसके कारण लोग इसके बारे में हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, किसी को अपनी अपनी वर्ण कौन सा है, अपनी जात कौन सी है पूछे तो उससे लोग बड़ा हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। पर समझना चाहिए कि ये एक फीचर है, ठीक है, अगर आपका शिक्षण क्या है पूछेंगे, आपका डिग्री क्या है, अभी कोई बोलेगा अगर मैं तो भक्त हूँ मेरी डिग्री क्यों पूछ रहे, पर अगर विवाह करना है तो अलग अलग प्रकार से कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, एजुकेशनल लेवल देखा जाता है, फाइनेंशियल लेवल देखा जाता है, कल्चरल देखा जाता है। तो कल्चर में हम कह सकते हैं कि ये भी एक चीज़ हो सकती है कि क्या है व्यक्ति का कास्ट पूछना, तो अभी उस पर कितना महत्व देना है किसको, ये व्यवहारिक रूप से अलग अलग वक्त अलग अलग फैसला कर अलग अलग जोर देंगे। कोई वक्त देखेगा अरे ये तो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत गंभीर है, तो कौन से कास्ट का है इसका ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कुछ हो गए उनको नहीं, ये भी उनको ये भी समान है। और क्या है क्योंकि कई बार परिवारों में ऐसे होता है कि वो लड़का या लड़की भक्त हो गए पर बाकी परिवार वाले भक्त नहीं होंगे। और क्या है भारत में संस्कृति अभी तक ऐसी है कि लड़के लड़की हमेशा माता पिता के खिलाफ जाके विवाह करना इतना आसान नहीं है, तो फिर शायद उनको वो लड़के लड़की को तो अपने आप के लिए ठीक होगा, किसी भी वर्ण से होगा उसे विवाह कर सकता, पर माता पिता नहीं मान रहे होंगे तो उससे बड़ा संघर्ष हो सकता है। तो क्या है कि हम जो तत्वज्ञान के स्तर पर जो सीखा हुआ है उसको जो व्यवहारिक सत्य को बिना देखे डायरेक्टली उस पर लाद नहीं सकते हैं, जो आध्यात्मिक सत्य है उसको व्यवहारिक परिस्थिति देख कर उस पर कैसे अमल करना है यह हमें देखना है, नहीं तो फिर हम बहुत असंवेदनशील जन बन सकते हैं, हम बहुत बहुत समस्या में पड़ सकते हैं। तो इसीलिए इट इज़ नॉट अगेंस्ट द फिलोसफी, तो कैसे है कि रादर देन जो संस्था या जो इस सवाल पूछे उनको दोष देने की जगह उनको दोष देने की जगह पे हमें समझना चाहिए कि ये मेरी पार्श्वभूमि के कारण मैं इसके बारे में हाइपर सेंसिटिव हो गया हूँ। अगर कोई व्यक्ति यही अगर मान लीजिए, अभी इसमें एक और बड़ी चीज़ है, आई कंक्लूड आंसर विद दिस, कैसे है कि एक है कि संस्था में आना, अगर कृष्ण भक्ति में आने के लिए कोई आपको आपकी जात नहीं पूछने वाला है, सब कोई आप आ सकते हैं, पर कृष्ण भक्ति की संस्था ये एक वॉलंटरी संस्था है, और इसमें अगर दो व्यक्ति अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं तो उसमें कोई व्यक्ति पे संस्था जोर नहीं सकती है कि आप ये मत देखो। सी मैरिज इज अ वॉलंटरी रिलेशनशिप बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। द इंस्टीट्यूशन इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मैरिज ऑफ इंडिविजुअल्स, द इंस्टीट्यूशन इज फैसिलिटेटिंग। तो अगर कोई संस्था में प्रवेश करने के लिए आप ही जात के आपको नहीं आने देंगे, आपको दीक्षा नहीं मिलेगी, आपको ये सेवा नहीं मिलेगी, आप ही जात, तो फिर वो संस्था की जिम्मेदारी है। पर अगर संस्था के भक्त अगर कुछ करना चाहते हैं, विवाह तो एक जीवन भर का संबंध है वो, तो इस पे संस्था को कुछ नियम नहीं बना सकती है कि इस्कॉन जो है यह एक ये एक प्रेरणा की संस्था है, ये कोई पुलिस स्टेट नहीं है। पुलिस स्टेट मतलब नहीं सबको नियम बनाने का, जो नियम नहीं पाले उसको जेल में डालने का, ऐसे इस्कॉन नहीं कर सकती है। ये एक ब्राह्मणिकल संस्था, एक क्षत्रिय संस्था नहीं है। क्षत्रिय देश का आदेश, देश का ये पालन करते हैं, उसमें गुनहगार को जेल में डालते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि मैरिज इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एंड फॉर सो इट इज नॉट दैट इस्कॉन इज डिस्क्रिमिनेटिंग बेस्ड ऑन द कास्ट, इट इज रादर मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन हु वॉन्ट टू फॉर्म अ रिलेशनशिप, दे विल फॉर्म इट अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस, एंड इस्कॉन कैनॉट लेजिस्लेट दैट। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों को समझना चाहिए, और एक को दूसरे पे हमें लादना नहीं है, पर दोनों का समन्वय साधना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। गोपाल की गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद,
थैंक यू। चैतन्य चरण प्रभु की जय,
गोपाल की जय।